ओम शांति। तेईस नंबर के रजिस्टर में 23 शीर्ष पर 9889 का प्रातः क्लास चल रहा था। दूसरे पेज का आज दूसरी लाइन बात चल रही थी, हमारा धर्म है ही शांत, तो फिर याद किसको करना है? जो शांति का रूप हो, रूप कैसा हो जिसका, शांति का रूप कहते ही है शांति देवा। शांति देने के निमित्त स्वरूप हो, मन ज्ञान मिलता है जिससे पाप करते हैं, ये ज्ञान और कोई को नहीं है। ये थोड़े ही समझते हैं हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, हमको शरीर से जुटा छोकर के बैठना, यहाँ तुमको वो बल मिलता है जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाप को बाप की याद में बैठ सकते हो। यहाँ ही वो बल मिल सकता है, दूसरी जगह नहीं मिलता है क्या? हाँ, यहाँ तुमको वह बल मिलता है जिससे तुम अपन को आत्मा समझो और आत्मा समझ कर बाप की याद में लो। बाप समझाते हैं कैसे अपन को आत्मा समझ विचार छू करके बैठो। कैसे मन तौर तरीका बतलाते, क्योंकि कैसे एक तो थ्योरेटिकल बताया जाता है और दूसरे कैसे का जब आप प्रैक्टिकल में भी होता है तो बाप समझाते। तुम जानते हो हम आत्माओं को अब वापस जाना, हम वहां के रहने वाले हैं, कितने दिन घर भूल गए थे और कुछ कोई इन बातों को थोड़ी समझते हैं। हमको तो घर जाना है, पतिता आत्मा तो वापस जा ही नहीं सकती। आत्मा मन मन बुद्धि जो पतित है, नीचे की ओर गिरी हुई है, ऊपर उड़ नहीं सकती, ऊंची शेरी वो आत्मा तो उस ऊंचे लोक में वापस जा ही नहीं सकती। न कोई ऐसा समझाने वाला है कि किसको याद करो। याद करो किसको? ऊर्ध्वगति पानी है, सप्तगति पानी है, क्योंकि ये दुनिया तो है झूठ खंड, झूठी दुनिया, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, तो दुनिया ही हो गई है गड्ढे में ले जाने वाली। मन बुद्धि का भी पतन और साथ साथ शरीर का भी पतन, तन मन धन सब वैसे। तो किसको याद करें? बाप समझाते हैं याद एक को ही करना है, और कोई को याद करने से क्या फायदा? माम एकम याद करो, तो माम किसने कहा? मुझे एक को याद करो, इसका क्या मतलब हुआ? क्या एक बिंदु को याद करो? बिंदु बिंदु तो सब आत्मा एक जैसी ज्योति बिंदु दिखाई पड़ेंगी और है ही, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी मनुष्य आत्माएं सब बिंदु है, तो कौन से मुझे एक बिंदु को याद करो? पता कैसे चलेगा है? तब ही पता चलेगा जब वो प्रैक्टिकल में पार्ट बजाए, जिसे कहते हैं परमात्मा पार्ट। तो बात समझाते समझो भक्ति मार्ग में शिव सेवक कहते रहते हैं, मालूम तो किसको नहीं है। इससे क्या होगा, मुख से सिर्फ नाम का जाप करते हैं। शिव का अर्थ पर भी ध्यान नहीं देते, नाम पड़ता है काम के आधार पर, जैसा काम किया वैसा शास्त्रों में नाम दिया हुआ है। शिव का अर्थ क्या है, कल्याणकारी। तो जो भक्त नाम का रस लगाते हैं वो ये नहीं जानते हैं कि वो कैसे कल्याणकारी और सारी दुनिया का कल्याणकारी और सदा ही कल्याणकारी, सदा शिव का आ जाता है। वो जानते नहीं है कि शिव को याद करने से पाप कटेंगे, ये किसको भी पता नहीं है। पाप कब कटेंगे, कल्याणकारी कब कहा जाए। जितना देह अभिमानी देह अहंकारी उतना अकल्याणकारी, अपना भी अकल्याण करता औरों का भी अकल्याण करता, और जितना आत्मा अभिमानी निराकारी स्टेज वाला अपने को भी बिंदु समझने वाला, समझने की बात है, ऐसे नहीं शरीर छोड़ करके बिंदु हो जाना। शरीर छोड़ करके तो बरबस 500 करोड़ मनुष्य आत्मा सभी बिंदु हो ही जाएंगी, उसमें क्या बड़ी बात हुई। लेकिन शरीर के रहते रहते ऐसी स्टेज बन जाए जैसे शिवलिंग यादगार मंदिर में दिखाई गई। पहली पहली सतोपदानी यादगार मंदिर बना सोमनाथ, जिसमें हीरे का ज्योति बिंदु दिखाया गया, वो ज्योति बिंदु है सुप्रीम सोल की यादगार। और वो ज्योति बिंदु जिसमें प्रवेश है, जिसमें रखा गया आधार के रूप में, वो रूप है शिवलिंग। वो बाबा कहते हैं कि मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ, मैं तो ज्योति बिंदु हूँ, फिर इतना बड़ा लिंग क्यों बनाई दिया है, ऐसा प्रश्न मुरली में क्यों पूछते। जरूर इसलिए पूछते कि बुद्धि हमारी चले, कि वो बिंदु जिस रूप में प्रवेश करता है वो रूप तो बड़ा ही होता है, साकार रूप, लेकिन स्टेज कैसी होती है। स्टेज होती है ऐसी निराकारी स्टेज जिसमें कर्म इंद्रियां नहीं दिखाई गई, जिस प्रकार ने उस लिंग में भी कर्म इंद्रियों को नहीं दिखाया, नाक हाथ पांव कान ये कुछ नहीं दिखाई गई। इससे क्या फायदा, इससे क्या लक्षित होता है कि वो है तो साकार, कोई हाथ पांव कटे हुए नहीं है, है तो साकार, लेकिन मन बुद्धि की स्टेज ऐसी बनी हुई है कि साकार इंद्रियों का ध्यान साकार शरीर का ध्यान नहीं है। ऐसी आपकी विचारी याद में टिकने वाला स्वरूप है, तो जैसे कोई याद करेंगे वैसे ही प्रेम भी बने। तो देह की स्मृति से पाप बनते हैं, देवताओं के पाप क्यों नहीं बनते, सत्युग त्रेता में पाप क्यों नहीं बनते हैं, क्योंकि वहां देह भान नहीं, अपने को आत्मा स्मृति रहती है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके पाप न बनते, परमात्मा की स्टेज हो चुकी हो। कहें कि क्या बाप पता था वो भी कर्माती से नहीं बने, बाबा ने तो कहा कि बाप दादा चाहे तो वापस जा सकते हैं। हाँ, बच्चों के लिए रुके हुए, इसका मतलब बाप दादा का भी कर्म बंधन किसके साथ तो बंधा हुआ है, बच्चों के साथ तो बंधा हुआ है, उनके अपने कर्म बंधन नहीं है। बाप पिता पिता राम, राम बाप, और दादा राम और कृष्ण वाली जो आत्माएं हैं, उस सत्य रूपी रंगमंच पर हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने वाली, उनकी पढ़ाई तो हो चुकी है, वो चाहे तो वापस जा सकती है। लेकिन शिव ज्योति बिंदु ही इस ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है, तो राम कृष्ण पहले से कैसे जा सकते हैं।
तो बच्चों को साथ लेकर के जाना है। इसलिए कर्म बंधन पूरा खलास नहीं हो सकता। एकदम कर्म अति शिष्य बन गए ऐसा अभी हो नहीं सकता। हाँ, बच्चों को निराकारी स्टेज में ले जाने के लिए वो परमात्मा का हितधारी परमात्मा के उस स्वरूप में एक तरीके प्रत्यक्ष होता है। जैसे बच्चे ही बात को प्रत्यक्ष करेंगे। इसलिए तो बताया कि वो कोई याद करने से पा सके। ये दुनिया में किसको पता नहीं है कि कैसे कटेंगे। कई गुरु लोग भी ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं शिव शिव बोलो, कान बंद करो तो घंटे बजेंगे, आवाज सुनाई देगा है? कान बंद करो तो मुसलमान लोग जब हम नमाज पढ़ते हैं तो कान में उंगली लगा लेते हैं। तो कान में अगर उंगली लगाई दी, कान बंद कर दिए, या दवाइयां खाली इंद्रियों को निस्तेज कर दिया, अथवा इंद्रियों से काम लेना ही बंद कर दिया, तो क्या ये साबित हो जाएगा कि इंद्रियां कंट्रोल में हो गई? आखिर इन कान में उंगली कब तक लगाए रहेंगे? आंखों को बंद करके कब तक याद में बैठेंगे? किसी नियम को यह है अंत मते दो बचे, तो क्या एक घंटे आंख बंद करके कान बंद करके ध्यान में बैठेंगे? जैसे गंगा में गोता लगाते हैं तो नाक आंख और कान बंद कर लेते, तो क्या जिस समय जितने समय वो स्टेज में बैठेंगे उससे ये प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी कि जब शरीर छोड़े तो इंद्रियां अपने विषय को ग्रहण न करे? ऐसे अंत मत को बचे हो जाएगी? नहीं, बाप कहते मुझे निरंतर याद करो, ऐसी स्टेज बना लो कि बल इंद्रियां अपना विषय लेने के लिए खुली हुई है। बला तुमको बंद करने की बात नहीं, लेकिन मन बुद्धि जब दूसरी तरफ होगी तो इंद्रियां अपने विषय को ग्रहण करेंगी नहीं। जैसे कोई गहरी याद में होता है महबूबा की, आंखें खुली हुई होती है, कोई सामने से निकल जाते हैं और उसको पता नहीं पड़ता। जैसे बुद्धि जहां लगाव है वहां लगी हुई, तो ऐसे ही आत्मा को उस परमात्मा बाप के प्रति परमात्मा पाठ के प्रति लगाव पैदा हो जाए समझ पूर्वक अंधश्रद्धा से नहीं। तो जब ऐसी समझ मिल जाएगी तो स्वतः याद आएगी और स्वतः संबंध जुटेगा। तो वो गुरु लोग जो कहते हैं कि कान बंद करो तो घंटे बजेंगे, आवाज सुनाई देगा, तो जरूर आवाज होगा ही, लेकिन इन सब बातों से कोई फायदा नहीं। यह आरटीपीसीएल थोड़े समय के लिए कंट्रोल करना, बाप तो इन सब गुरुओं के अनुभवी है ना, बाप ने कहा है ना, हे अर्जुन इन सब को छोड़ो, सतगुरु मिला तो इन सब की दरकार नहीं। सतगुरु तारता है मतलब पार ले जाता है, या किस पार ले जाता है? आत्मा को, सिर्फ आत्मा और शरीर, शरीर रूपी नैया दोनों का पार ले जाने वाला एक ही शिवैया है, ऐसे मुरली बाबा के बोला। ऐसे नहीं सिर्फ आत्मा को ही ले जाने वाला है, आत्मा किसने बैठी है? शरीर रूपी नैया में, तो नैया ही अगर डूब जाए तो आत्मा रूपी विषैया बचेगा क्या? नहीं बचेगा। तो इस विषय वैतरणी नदी कहो, संसार सागर कहो, विषय सागर कहो, इससे अगर पूरा ही पार जाना है तो इस शरीर के रहते रहते ही हमको अपनी इंद्रियों के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लेंगे। ये काम वो गुरु लोग नहीं सिखा सकते, तो सतगुरु ही तारने वाला है, बाकी तो सब है डुबोने वाले। ये मर भी लाए जाएंगे और अपने फॉलोअर्स को भी अपने पीछे ही ले जाएंगे। मन स्वयं भी दुर्गति कम जन्म को प्राप्त करेंगे, पर सत्युग में आएंगे, त्रेता में आएंगे, लेकिन जन्म कम लेंगे। पाप के पक्के बच्चे चौरासी में लेने वाले देवता भी बन सकते, कलाएं आत्मा की कम हो जाएंगी। चौथाई कला दुर्गति हुई कि नहीं, मान लो दूसरे जन्म में पैदा हुआ तो चौथाई कला कम हो जाएगी। तो पाप तो संपन्न स्टेज में ले जाता है, पूरा ही तारने वाला है, बीच में अधूरा छोड़ने वाला नहीं है। बाप कहते मैं तुम्हें आज भी संसार से पार ले जाता हूं, विषय सागर से पार जाना। ये सब बातें समझाने की है, शास्त्रों ने भी ये बातें दी हुई, शास्त्रों में क्या कहानी दी हुई, इसको पार ले गए तो पार ले गए। कृष्ण के लिए क्या दिखाया है कि कृष्ण को टोकरी में डालकर वसुदेव विषय वैतरणी नदी यमुना नदी को क्रॉस कराया। यमुना नदी कैसी दिखाई जाती है, काली काली कोयला हो गई विकारों के कारण, पांच नाक काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अच्छी तरह उसने वास कर दी, फिर पानी में कीड़े पड़ जाते, जहरीला पानी हो गया। ज्ञान जल जब विकार भरे होंगे तो ज्ञान निकलेगा मुख से वो भी कैसा निकलेगा, जहरीला जहर भरा हुआ। तो जो नहाने उसमें जाता था वो ही काला। कहते हैं कृष्ण ने भी स्नान किया तो गोटा लगाया तो काला हो गया। सही रहस्य को तो समझते नहीं, कृष्ण कोई काला नहीं हो गया, ये तो नाम दिया हुआ है श्याम सुंदर। एक का नाम है, दो का नाम है, एक का नाम है श्याम और फिर उसी शरीर में सुंदर, ऐसे नहीं 69-18 जनवरी तक सुंदर वो श्याम और फिर अगले जन्म में सतयुग में जाकर दूसरा शरीर लेकर के सुंदर बनेगा। उस स्वरूप का डायन नहीं है शास्त्रों में, शास्त्रों में डायन है वही ब्रह्मा की सोल शरीर छोड़ करके जब किसी ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करती है तो वो ब्राह्मण बच्चे के थ्रू परमात्मा शिव तीसरा नेत्र ज्ञान पूरी और वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्म काला पार्ट भी उसी एक स्वरूप के द्वारा चलता है, तामसी पार्ट विषय विकारी विषय वैतरणी नदी को क्रॉस करने का भी पार्ट चलता है, जिसे काला हुआ दिखाया गया। कृष्ण की ग्लानी करते नारायण की कोई ग्लानी करता है, नारायण की ग्लानी क्यों नहीं करते, कृष्ण की क्यों करते हैं? नारायण दूला कला संपूर्ण है इसलिए उसकी ग्लानी नहीं है सब। तो ये सब बातें समझाने की है। माधी तो वैसे नाव चलाने वाले होते हैं परंतु समझाने के लिए ये नाम पड़ गए माधी मना, नैया को पार ले जाने वाला शिवैया, वो माधी तो स्थूल नाव को पार ले जाती और नाव होती है काठ की नवैया। मन कठ बुद्धि होते हैं उन कठ बुद्धियों को परमात्मा बाप क्रॉस कराता है, उनको कहा जाता है प्राणेश्वर बाबा अर्थात प्राणों का दान देने वाला, वो अमर बनाए देते। प्राण आत्मा को कहा जाता है, आत्मा निकल जाती है तो कहते हैं प्राण निकल गए। पहले जब मुर्दे को उठाते हैं तो मुंह उस तरफ नहीं, मुंह इस तरफ गलत किया और टांग शमशान की तरफ करते, मुंह इस तरफ शहर की तरफ। पहले जब جاتے ہیں تب, اور ٹانگ شمشان کی طرف کر دیتے ہیں. پھر جب وہاں شمشان میں اندر گھستے ہیں تو الٹا کر دیتے, مخ کر دیتے شمشان کی طرف اور لات کر دیتے. جب جیتے جی مرنے کو ہوتے ہیں تو جیتے جی مرنے سے پہلے بدھی کدھر لگی ہوئی ہوتی, من بدھی روپی سر کس طرف ہوتا ہے, دنیا کی طرف, دیہ اور دیہ کے سمبندیوں کی طرف. اور جب جیتے جی مرتے ہیں تو پرانی دنیا سے اور باپ کے گھر کی طرف جاتے ہیں. باپ کا گھر شیوالے کہاں بنا ہوتا ہے, شہر کے اندر یا شمشان میں؟ ہمیشہ شمشان میں بناتے ہیں شیو کے مندر باہر. تو بات ہے یہاں کہ پرماتما باپ کے گھر کے جو بچے بنتے ہیں وہ تو پرانی دنیا سے پورے مر جاتے ہیں. جب تک جیتے جی مرے نہیں ہیں تب تک باپ کے گھر میں رہ نہیں سکتے. باپ کے پاس کون رہ سکیں گے؟ گرنے میں بولا ہے باپ کے پاس وہی رہ سکیں گے جو پورے مرے ہوئے ہوں, چاہے پرانی دیہ اور دیہ کی دنیا. تو جب مر جاتے ہیں تو سر کس طرف ہو جاتا ہے, یعنی بدھی کہاں جاتی ہے؟ باپ کے گھر کی طرف بدھی لگی رہی اور اس دنیا کو بدھی روپی پاؤں سے لات مارے. تم نے کرشن کو بھی ایکوریٹ دکھایا. پہلے کرشن کا چتر ہر ایک سیوا کیندر میں لگایا جاتا تھا اور نیچے لکھا ہوتا تھا شری کرشن آ رہے ہیں, اور ہاتھ میں دکھاتے تھے سورج کا گولا اور پاؤں میں دکھاتے تھے نرک کا گولا, کہ نرک کی دنیا کو بدھ روپی پاؤں سے لات مار رہے ہیں اور سورج کی دنیا بدھ روپی ہتھیلی میں دھارن کر رہے ہیں. تو یہ چتر کہاں کی یادگار ہوئی؟ اور یہ بھی لکھا ہوتا شری کرشن شیگر ہی آنے والے, تو ابھی شیگر پورا نہیں ہوا ہے. یہ بات تو ہو گئی سنسٹر سے پہلے کی, تو ابھی تو بیسویں سال پورے ہونے جا رہے ہیں. تو کرشن کیا ابھی ہاتھ میں بزرگ کی ہتھیلی میں ان کے سر کا نقشہ نہیں آیا ابھی تک؟ جلدی ہی آ رہے, اور پھر یہ بھی مجھے بول دیا دس ورس کے اندر آ رہے ہیں. دس ورس کے اندر پرانی دنیا کا وناش اور نئی دنیا کی استھاپنا, تو ضرور کوئی سول بات نہیں. ایسے نہیں کہ سول بچے کے روپ میں کرشن پیدا ہونے کی بات ہے. ہاں وہ آتما جو کرشن کا پاٹ بجانے والی ہے وہ کوئی برہمن بچے میں پرویش کر کے ایسا پاٹ بجاتی کہ پرانی دنیا سے بدھیوں کو ٹوٹتا ہے اور نئی دنیا میں پریکٹیکل جیون میں جیتی ہے اور نیا سنگھن تیار کرتی.
یہاں آ کر کے جب بیٹھتے ہو تو اٹینشن بدھی باپ میں لگی رہے, تمہارا یہ اٹینشن فار ایور ہے, مطلب سدا کے لیے. جب تک جینا ہے باپ کو یاد کرنا ہے, اور جب مر جاؤ گے, جب تک جینا ہے تب تک باپ کو یاد کرنا ہے. ارے اس میں کوئی نئی بات ہو گئی کیا؟ جب آدمی زندہ رہتا ہے تبھی تو یاد کرتا ہے, مر جاتا ہے پھر تو یاد کرنے کی بات ہی نہیں. لیکن ہمارا جینا بھی کون سی دنیا میں ہونا چاہیے؟ اس پرانی دنیا میں جب تک ہم جیتے ہیں تب تک باپ کو یاد کر رہے. جب تک جینا ہے تب تک پینا ہے. دیہ اور دیہ کی سمبندھوں کی دنیا میں جب تک ہمیں زندہ ہے تب تک جان جل پینا پڑے گا, اور جب دیہ اور دیہ کی سمبندھوں کی دنیا سے بدھیوگ ٹوٹ جائے گا پورا, تو نہ یاد کرنے کی درکار رہے گی اور نہ جان لینے کی درکار رہے گی, پھر تو بس آتما کی پرتی رہ جائے گی. بس یاد سے ہی جنم جنمانتر کے پاپ کٹتے ہیں, یاد نہیں کریں گے تو پاپ بھی نہیں کٹیں گے. باپ کو یاد کرنا ہے, یاد میں آنکھیں کبھی بند نہیں کرنی ہے. کیا؟ ہاں آنکھیں کھلی ہوئی رہیں تب پتا چلے, دیکھنے والے کو بھی پتا چلے یہ اوجیکٹ ہے یا ویکت میں, کیونکہ ویکت اور اوجیکٹ اسٹیج آنکھ سے ہی دیکھنے میں آتی ہے. بہتوں کو دیکھا ہوگا جیسے دیکھتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہیں, تو وہ ہے اوجیکٹ اسٹیج. اوجیکٹ کا مطلب من بدھی یہاں نہیں ہے, شریر تو یہاں ہے لیکن من بدھی سے وہ آتما یہاں سے اڑ گئی. तो अगर ऐसी स्टेज बनानी है तो कभी आंख बंद करके या सर नीचे झुका करके याद नहीं करना है। सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं, कोई कन्या माता है सामने आएंगे तो सर नीचे झुका जाएंगे, कहीं देखने में ना आ जाए, क्योंकि कहीं देखने में आ जाएगी तो बुद्धियों को बाहर लटक जाएगा। तो ये बात किनकी है? सन्यासियों की, जो हद का सन्यास करने वाले। कोई कोई तो स्त्री का मुंह भी नहीं देखते कि मुंह देखा अब बुद्धियों को वहां भाग जाएगा, पट्टी बांध कर बैठते। तुम जब यहां बैठते हो तो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सुदर्शन चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम लाइट हाउस हो ना, और जो लाइट हाउस का काम करेगा तो लाइट हाउस खुला हुआ होगा तब रोशनी जाएगी, या उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा तब रोशनी जाएगी? खुला हुआ होना चाहिए ना। तो तुम तो लाइट हाउस हो। ये है दुखधाम। एक आंख में है दुखधाम, नहीं, एक आंख में है सुखधाम और दूसरी में है शांति धाम। रंग लिखी है यहां पर। उठते बैठते अपने को लाइट हाउस समझो। बाबा भिन्न भिन्न नमूने से बताते हैं, तुम अपनी भी संभाल करते रहो। क्या संभाल करो? तीन दुनिया है, दुखधाम, शांति धाम और सुखधाम। क्या संभाल करनी है? कि इन आंखों से दुखधाम देखने में ना आए, देखते हुए भी न देखो। हे अर्जुन, ये नाना चाचा काका ताऊ सब मरे पड़े हैं, इनको तू जिंदा जिंदा न समझ। आज तेरे को लगता है ये मेरे हैं, लेकिन जब विनाश की रौरव लीला शुरू होगी तो सबको अपनी अपनी पड़ेगी। न कोई किसी का बाप, न कोई किसी का बच्चा, न कोई किसी की अम्मा, न कोई किसी का बहन। सारे ही संबंध झूठे साबित नजर आए। प्रैक्टिकल जीवन में कोई किसी का साथी सहयोगी नहीं रहेगा, और सबको कौन उस समय दिखाई देगा? एक बाप, परमात्मा बाप ही सहारा है, और दूसरा कोई सहारा नहीं होगा। जैसे सैंपल दिखाया कराची में, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, तो जिन्होंने मेरा है करके तालों में बंद करके रखा था सुरक्षित करने के लिए, वो सब चौपड़ी काट गए और वो स्वतंत्र हो गए। तो जो आदि में हुआ सैंपल रूप में, वो अंत में होगा विराट रूप में ड्रामा। तो बाप को याद जरूर करना है, कोई रास्ते में मिले तो उनको बताना है। पहचान वाले भी बहुत मिलते हैं, जो पहचान वाले एक दो को मिलते हैं दुनिया में तो उनको भी क्या कहते हैं? कोई पहचान वाला रास्ते में मिलता है तो क्या कहते हैं? पुरानी परंपरा क्या कहने की है? हाँ, जय सिया राम, राम राम है? राम राम करते हैं ना, अपनी जो जान पहचान के होते हैं उनसे करते हैं, दूसरों से नहीं करते हैं। इसका मतलब ये बात कहाँ के लिए बोली है? ये राम नाम का जो परिचय देना है, जो अपने जन्म के पूर्व जन्म के हितैषी होंगे वो ही ये राम नाम का परिचय लेने के लिए आएंगे, नहीं तो आएंगे ही, और न उनसे मेल होगा। जीवन में चलते फिरते किन आत्माओं से मेल होगा? जिनका पूर्व जन्म का हिसाब किताब होगा वो ही मिलेंगे, और दूसरे न मिलेंगे, और न उनको राम नाम का दान देंगे, और देंगे भी तो पहले तो अनजान होकर के देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। तो उनको बताना है, उनको बोलो आपको पता है ये दुखधाम है और वो है शांति धाम। उनको क्या बोलो कि जिस दुनिया में रहे पड़े हो मन बुद्धि से, वो दुनिया क्या है? दुखधाम। और फिर बाप के घर की तरफ इशारा करो, वो है शांति धाम और सुखधाम, जहां अब जाना है। आप शांति धाम सुखधाम में चलना चाहते हो या इसी दुखधाम में रहना चाहते हो? ये तीन चित्र किसको भी समझाना तो बहुत सहज है। कौन से चित्र? तीन तीन लोक का चित्र, सुखधाम, शांतिधाम और दुखधाम। हम आपको इशारा देते हैं, क्या शांतिधाम, सुखधाम और दुखधाम। लाइट हाउस भी इशारा देता है। ये नैया है जो रावण की जेल से लटक पड़ी है। नैया, ये शरीर रूपी नैया रावण की जेल में लटकी पड़ी है। मनुष्य मनुष्य को सैल्वेज नहीं कर सकता, वो तो सब है आर्टिफिशियल हद की बात है, और ये है बेहद की बात है। सोशल सोसाइटी की सेवा भी वो नहीं है, वास्तव में सच्ची सेवा ये है सभी का बेड़ा पार करना। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम मनुष्यों की क्या सर्विस करें, क्या सर्विस करें? इशारा दें, नानक चाप जहाज, शंकर चाप जहाज, उस जहाज की तरफ इशारा दें। यही चढ़े उतरे पार नर, तो भक्ति मार्ग में कह दिया है। शंकर जी की जड़ मूर्ति की तरफ इशारा करते हैं, नानक का चित्र लगा देते हैं और कहते हैं ये है पार लगाने वाला सदगुरु, चित्र लगा देते हैं और कहते हैं ये है पार लगाने वाला सदगुरु है। नानक नाम जहाज भी कहते हैं, तो वास्तव में वो तो सिर्फ कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बात कहाँ की है? नानक जो सच्चाई को मानने से ना न करे वो हुआ सच्चा नानक। और सच्चाई क्या है? परमात्मा बाप ने गीता माता ब्रह्मा के मुख से जो कुछ भी बोला वो है सत्य, सच्चाई। और उस सच्चाई को मानने से जो ना न करे किसी बात को, कोई भी बात क्यों न हो मुरली की, लेकिन मुरली की एक एक वाक्य को, एक एक शब्द को मानने वाला हो तो वो हुआ सच्चा नानक, सतगुरु का स्वरूप। उसको हर बात अच्छी लगेगी मुरली की, कोई ऐसी बात नहीं होगी जो कंट्राडिक्टरी और दोगली लगे। तो बताया कि दुनिया में तो सब आर्टिफिशियल हद की बातें हैं, तुम्हारी बुद्धि में असली बात है कि हम मनुष्यों की सर्विस कैसे करें, क्या इशारा दें, कहां के लिए इशारा दें। पहले तो कहना है तुम गुरु करते हो मुक्ति धाम में जाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, बाप से मिलने के लिए, परंतु कोई मिलता तो है नहीं। इतने गुरु करने वाले हैं, इतने ढेर गुरु हैं, लेकिन परमात्मा बाप से तो कोई मिलता ही नहीं। मिलने का रास्ता बाप ही बतलाते हैं, मिलने का रास्ता सिवाय बाप के, बाप का परिचय कोई और दूसरा दे नहीं सकता। मैं खुद ही आकर के बच्चों को अपना परिचय देता हूँ। वो समझते हैं ये शास्त्र आदि पढ़ने से भगवान मिलेगा, कौन समझते हैं? वो माना कौन, तथाकथित ब्राह्मणों की दुनिया में समझते हैं कि ये शास्त्र, शास्त्र माना शासन करने का जो ग्रंथ बना है, जो कागज जोड़ जोड़ करके इकट्ठे कर दिए उसको कहते हैं शास्त्र। जो भी पत्ता छपाया जाए मनुष्य के द्वारा, अपने तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना के द्वारा, जो कुछ छपाया जाता है या जो भी ग्रंथ तैयार किया जाता है मनुष्यों के द्वारा, तो उसमें मिक्सचर की जरूर होती है। जैसे दूध का भरा हुआ घड़ा रखा हो और उसमें एक बूंद सर्प का विष मिल जाए तो सारा क्या हो जाएगा, विष हो जाएगा। तो परमात्मा बाप सन्मुख बैठ करके जो सुनाते हैं वो ही सच्ची गीता है, और बाकी जब वो टैप रिकॉर्ड में भर जाती है अथवा कागज में छप जाती है मनुष्यों के द्वारा, तो वो सच्ची गीता नहीं रहती। ऐसे कहते हैं बाबा टैप रिकॉर्ड एक्यूरेट सुनाएगा, लेकिन फिर बताया वो है सेकंड, क्या नंबर दो का माल है। टैप रिकॉर्ड में भी क्या है, नंबर दो का माल, और जब मुरली में छपा हुआ पड़ा या क्लास में बैठ करके ब्राह्मणी से सुनते हैं तो वो हुआ थर्ड क्लास। क्यों? क्योंकि टैप रिकॉर्ड में भी वाइब्रेशन नहीं होंगे सुनाने वाले के,
हाव भाव नहीं होंगे। जो दृष्टि का फोर्स है, दृष्टि से जो इशारे मिलते हैं, वो इशारे भी उसके अंदर नहीं होंगे, तो अर्थ बदल जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो वो समझते हैं कि शास्त्र पढ़ने से भगवान मिलेगा। कौन समझते हैं? बाहर की दुनिया वाले सिर्फ, बाहर की दुनिया वाले भी सन्यासी ऐसे ही समझते हैं कि भगवान भी भले आ जाए तो भी हम शास्त्र शास्त्र नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ भी ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे ही समझते हैं कि भगवान तो ज्ञान दे करके हमको चला गया।
ये तो बाप ने तुमको सब कुछ समझाया, तुमने चित्र में दिखाया है कि सफेद, एक को याद करना है, जो भी धर्म स्थापक हैं वो भी ऐसे इशारा देते हैं। क्या? एक को याद करो। गुरु नानक कहते हैं एक ओंकार। बाइबल में कई जगह लिखा हुआ है गॉड इज लाइट, तो उससे निराकार की तरफ सब इशारा करते हैं और ऊपर की तरफ इशारा करें, ये नहीं कहेंगे एक को याद करो। अरे क्या एक नीचे नहीं हो सकता है? क्या एक ऊपर ही इशारा क्यों करते हैं? एक हाँ, जब ऊपर इशारा करते हैं तो मतलब है कि ऊपर रहकर के कोई सारी सृष्टि का उद्धार नहीं करता है, आता तो नीचे है लेकिन स्टेज उसकी ऊंची होती है। प्रैक्टिकल जीवन में रह करके, करणहार बन करके, परमात्मा कर्म करके दिखाता है बच्चों को। तो तुमने चित्र में दिखाया है एक को याद करना है, चित्र है प्रदर्शनी है तुम्हें। राम भी उसी एक निराकार शिवलिंग को याद करते, तो काशी विश्वनाथ का भी चित्र दिखाया, सब धर्मों का दिखाया है, क्राइस्ट के लिए भी दिखाया, गुरु नानक के लिए भी दिखाया, बौद्धियों के लिए भी दिखाया, कि सब उसी एक निराकार गुरु ज्योति को याद करते। तो ज्योति का मतलब ज्ञान की ज्योति। पता कैसे पड़ता है कि इनमें बाप भगवान है? जब ज्ञान सुनाते हैं तो वो ज्ञान की ज्योति है और वो ऊंची स्टेज वाली है। जो भी धर्म स्थापक हैं वो भी ऐसे इशारा देते, उन्होंने ये पद पाया है क्योंकि तुमने शिक्षा दी है, तो वो भी ऐसे इशारा देते हैं। कैसे? उस एक को याद करो, नीचे की ओर उंगली करके कभी नहीं कहेंगे उसे एक को याद करो, ऐसे इशारा देते हैं। साहब को जपो, वो बाप है सतगुरु, बाकी तो अनेक प्रकार की शिक्षाएं देने वाले हैं, उनको कहा जाता है गुरु। आचार्य जी बनने की शिक्षा कोई जानते ही नहीं है कि आचार्य जी कैसे बने। तुम कहेंगे तो बाबा को याद करो, वो लोग शिव के मंदिर में जाते हैं तो भी हमेशा शिव को बाबा कहने की आदत पड़ी हुई है। कौन? भक्त लोग। नानक को गुरु बाबा कहते हैं, परंतु वह निराकार तो नहीं है। कौन? न गुरु नानक निराकार है और न मंदिर में शिवलिंग की तरफ जाते हैं तो वो भी पत्थर का लिंग है, निराकार है कि साकार है? लिंग भी कैसा है, साकार रूप है ना, तो दोनों ही निराकार नहीं है। इशारा क्या हुआ? दोनों ही साकारी शरीरधारी है ना, फिर क्यों कहते हैं शिव तो है निराकार? सच्चा बाबा वो सबका बाबा हुआ, जब बाबा कहेंगे तो जरूर साकार हुआ, और जब बिंदु है तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप बिंदु, सिर्फ बाप का कनेक्शन है और दूसरा कोई संबंध नहीं हो सकता, और बच्चे भी आपस में भाई भाई हैं। बिंदु बिंदु आत्माएं आपस में सब भाई भाई, भाई बहन भी नहीं, शिव बाप के बच्चे सब भाई भाई। और जब शिव बाप साकार शरीर में प्रवेश करते हैं ब्रह्मा प्रजापिता के तन में, तब आपस में संबंध क्या बनता? भाई बहन का। तो जब तक बिंदु है तब तक सिर्फ एक ही संबंध बाप का,
बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, दूसरा कोई संबंध नहीं। ग्रैंड फादर या बाबा का संबंध भी कब बनता है? जब साकार शरीर में प्रवेश करे। तो भक्ति मार्ग में भी उसको बाबा कहते हैं और ज्ञान मार्ग में भी हम उसे बाबा कहते हैं। तो ऐसे नहीं है कि निराकार का मतलब वो सिर्फ बिंदु है तो साकार, लेकिन निराकारी स्टेज में रहने वाला हमारा सच्चा बाबा है, वो आत्मा या शरीर ही है। यहाँ जब बैठते हो तो इस धुन में बैठो। तुम जानते हो कि हम कैसे फंसे हुए थे, हम फंसे हुए थे। अब बाबा ने आकर के हमको रास्ता बताया है, बाकी तो सब फंसे हुए हैं, छूटते ही नहीं है। देह और देह की स्मृति से बुद्धि छूटती नहीं और प्रैक्टिस भी नहीं करते, क्योंकि कोई जानते ही नहीं। सजाएं खा करके फिर सब छूट जाएंगे। जो अभी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो अंजाम क्या होगा? अंत में शरीर को सजाएं खानी पड़ेंगी और शरीर से उनका मोह टूट जाएगा। तुम बच्चों को समझाते रहते हैं, मोर्चरा खाकर थोड़े ही मानी लेनी है कि सजाएं खाओ और जितनी सजाएं खाएंगे उतना ही पद भ्रष्ट हो जाएगा। जिनका पद भ्रष्ट होगा वो फिर सचिव के आदि में मान मर्तबा नहीं लेंगे, कहां लेंगे? पद भ्रष्ट होने का मतलब ही है बाद में मान मर्तबा लेना। 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं को सबको मान मर्तबा तो मिलेगा, लेकिन किसी को आदि में मिलेगा, किसी को त्रेता में मिलेगा, किसी को द्वापर में मिलेगा, कोई आत्मा बिल्कुल अभी लास्ट में भी उतर रही है। तो पहले पहले थोड़े समय के लिए उनको मान मर्तबा जरूर मिलता है, जैसे आचार्य जगदीश। और जो पहले पहले उतरता है आदि सो अंत, तो मध्य भी उसका सुखाला जरूर होगा। मध्य में भी वो आत्मा श्रेष्ठ पार्ट बजाती है। हीरो पार्ट धारी बाप के बच्चे भी हैं तो बाप भी हीरो पार्ट धारी। सिर्फ एक जन्म में उसकी महिमा नहीं होती, भारत की महिमा तो अपरमपार है, एक जन्म की बात नहीं है। माने उनको ताकत कम मिलती है, जो जितनी सजाएं खाएंगे उतनी उनको ताकत कम मिलती है। कम मिलती क्या है, उन्होंने ली ही कम है। परमात्मा बाप आया और उसके स्वरूप को नहीं पहचान पाया तो निरंतर याद नहीं टिकेगी। एक है सामान्य रूप को पहचानना, सर्व सामान्य रूप बिंदु, मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाप बिंदु, ये तो सर्व सामान्य रूप हो गया, बेसिक नॉलेज। और एक है विशेष रूप को जानना, तो बिंदु है तो बिंदु भी कैसे विशेष पार्टधारी है, कौन सी पेक्युलरिटी है उसके पार्ट में, कैसे वो एवर प्योर पार्ट बजाता है, प्रैक्टिकल प्रूफ देने वाला हो एवर प्योर का, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ये बिंदु एवर प्योर और ये बिंदु सिर्फ प्योर। 500 करोड़ ज्योतिबिंदु आत्माओं में से एवर प्योर कैसे पता चलेगा, जबकि प्रैक्टिकल में आकर के पार्ट बजाए, पार्ट बजाएगा तो उसका चित्र दिखाया हुआ है। किसका? शिव का चित्र दिखाते हैं, शंकर का भी चित्र दिखाते हैं, विष पीते हुए दिखाते हैं शंकर को, विष भी पी रहा है और फिर कहते हैं कि वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, वो कभी मरता नहीं है। अरे अभी हमारी ये वर्तमान में प्रैक्टिकल स्टेज क्या है, विकारों में गिरे और मन बुद्धि जो है ज्ञान से भागने लगती है, अनिश्चय हो जाता है, सर्विस करने में मन नहीं लगता है, जैसे ज्ञान से मरने लग पड़ते हैं। तो ज्ञान में जिंदा रहना किसका हो सकता है? उसी का हो सकता है जो विकार की दुनिया से, विकारों से दूर हो करके अपनी मन बुद्धि को रखे। तो एक तो है सन्यासियों की तरह कि गर्भस्थ की कीचड़ से ही दूर हो जाते हैं, और दूसरे उन बच्चों का वो मिसाल है जो अपने गर्भस्थ के कीचड़ को छोड़ते नहीं है, क्योंकि किसी को छोड़ना
माना परमात्मा बाप का अपमान करना। जिनको छोड़ा वो भी तो परमात्मा बाप के बच्चे हैं, क्या उनका उद्धार नहीं करना है? उनका भी उद्धार करना है और हमको अपना भी उद्धार करना है। इसलिए किसी को छोड़ने करने की बात नहीं, क्या करें, हम अपने को कंट्रोल कर लें। तो जो अपने तंत्र में रहेगा, शासन में रहेगा, वो दूसरों का शासन भी कर सकेगा और स्वतंत्र भी रह सकेगा। तो ये कांटों का जंगल है, सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं, दुख देते रहते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह। किसका गार्डन है? अल्लाह का गार्डन। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं पैराडाइज था, कब? क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था भारत में। तो क्राइस्ट को कितने वर्ष हुए? क्राइस्ट को 2000 वर्ष हो चुके, और 3000 वर्ष पहले क्राइस्ट से पूर्व तो कौन सा टाइम हुआ? 2000 वर्ष ये, और 3000 वर्ष क्राइस्ट से पहले, तो 5000 वर्ष का चक्र पूरा हो गया। और उससे पहले बताया, उसके अंदर नहीं, तो कौन सा टाइम हुआ? सतयुग का टाइम हुआ या संगम का टाइम हुआ? तो जरूर है, इस पुरुषोत्तम संगम युग में ही सब धर्म की आत्माएं मौजूद होती हैं। क्रिश्चियंस को भी ये महसूस होता है कि भारत में पैराडाइज था, सतयुग की बात नहीं है। सतयुग में तो दूसरे धर्म की आत्माएं होंगी नहीं, कोई समय साक्षात्कार भी कर सकते हैं पैराडाइज का। हो सकता है यहाँ के धर्म वाला हो, बाकी वहाँ जा नहीं सकते। कहाँ? पैराडाइज में कोई जा नहीं सकते हैं, सिर्फ देखा। तो इसमें क्या हुआ? साक्षात्कार से तो कोई फायदा होता नहीं है, देखने से कोई जा नहीं सकता। जबकि बाप को पहचाने और नाली भी ले, बुद्धि का साक्षात्कार करे, तब स्वर की प्रैक्टिकल में प्राप्ति हो सकती है। तब तो आ नहीं सकते स्वर्ग में, देवताएं तो वहां बहुत थोड़े होते हैं। अभी इतने हिंदू हैं, असल में वो देवताएं थे ना, परंतु वो देवताएं थे पावन और ये हिंदू हैं पतित। पतित को देवता कहना ये शोभेगा नहीं। ये एक ही धर्म है जिसे धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट कहा जाता है। कौन सा धर्म? हिंदू धर्म। धर्म भ्रष्ट भी धारणाओं से भ्रष्ट, और कर्म भ्रष्ट भी। आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते, देवता धर्म का कालम ही नहीं रखते, देवता धर्म का कालम उड़ाए देते। हम बच्चों का बोझ बिलवट बाप है जो तुमको क्या से क्या बनाए देते हैं। तुम समझा सकते हो कि बाप कैसे आते हैं? जबकि देवताओं के पैर पुरानी तमोप्रधान सृष्टि पर नहीं आते, तो देवताओं से परमात्मा श्रेष्ठ है या नीचा है? तो परमात्मा तो देवताओं से भी ऊंचे है ना। तो परमात्मा के बुद्ध रूपी पांव इस सृष्टि पर आएंगे क्या तमोप्रधान दुनिया में? है परमात्मा की मन बुद्धि रूपी आत्मा इस तमोप्रधान सृष्टि पर आएगी क्या? नहीं आएगी। परमात्मा तमोप्रधान दुनिया में नहीं आता है क्या? आना चाहिए। बताते हैं, मैं तीन धर्मों की स्थापना करता हूँ, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। तो पहले शूद्रों को आकर क्या करता हूँ? ब्राह्मण बनाता हूँ। ये हुई फर्स्ट मशीनरी, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना, ये है पहली मशीनरी। लेकिन ब्रह्मा द्वारा जो ब्राह्मण बनाता है वो परमात्मा पार्ट नहीं है क्या? इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं दिखाई जाती, पूजा पवित्र की होती है। ब्रह्मा के मंदिर नहीं है जिनमें पूजा होती हो, ब्रह्मा के मंदिर नहीं है। एक अजमेर में सिर्फ मंदिर है,
اس کا بھی نام رکھ دیا اجمیر. اج مانا بکرا, میڑ مانے میڑا. میڑ بکرا بدھی ہوتے ہیں. میڑ بکروں کی گتی دیکھی ہے, ایک جس راستے پہ جائے گا اسی راستے پہ سارے ہی, ایک گڈھے میں جائے گا سارے گڈھے میں کود پڑیں گے, اپنی بدھی نہیں چلائیں گے کہ اصلیت کیا ہے. تو ایسے استھان پر برہما کا مندر بنائی دیا ہے, نام رکھ دیا اجمیر. کہاں کی یادگار جان کی گہرائی میں نہیں جانا, جان کی گہرائی میں جاؤ گے تو ڈوب مرو گے. تو اس طرح بدھی کا لاکھ لگانا یہ ہے اجمیر میں رہنے والوں کی نشانی. ارے جان کا تو خوب پرچار پرسار ہونا چاہیے, جان کی باتوں کا تو خوب منن چنتن منتھن کرنا چاہیے. جان کا منتھن کرنے سے, جل میں اسنان کرنے سے تو شدھی ہی آئے گی, اشدھی کبھی ہو نہیں سکتی. اور پھر یہ تو جان ساگر کا جل ہے, جان ساگر میں تو ہم جتنا بدھی کو لگائیں گے اتنی من بدھی کا میل صاف ہوگا. تو جب دیوتائیں ہی اس پتت سرشتی پر نہیں آتے ہیں تو پرماتما باپ اس پتت دنیا میں شودر میں آئے گا کیا, جانور بدھیوں میں آئے گا کیا, کس میں آئے گا؟ منن چنتن منتھن کی اسٹیج میں مست رہنے والے میں آئے گا یا جانوروں میں آئے گا, بیل میں آئے گا کیا؟ پرماتما جانوروں میں نہیں آتا, انہوں نے تو جانوروں کے اوتار دکھائے دیے, کچھ اوتار مچھ اوتار. واسطہ میں پرماتما کس میں آتا ہے؟ منو کی اولاد کہا جاتا ہے. منو مانا منن چنتن کرنے والا, تو اولاد بھی کیسی ہوگی منن چنتن منتھن میں مست رہنے والی. تو دیوتائیں بھی پتت سرشتی پر نہیں آتے, تو دیوتاؤں کو جو دیوتا بنانے والا پرماتما ہے وہ پھر پتت میں کیسے آوے گا؟ پتت میں آوے گا یا جس کی من بدھی بندو کو یاد کرتے کرتے نرمل ہو چکی ہوگی اس میں آوے گا, سوکشم بن چکی ہوگی اس میں آوے گا. کیونکہ مرلی میں تو بولا ہوا ہے کہ جب تمہاری آتما روپی سوئی کی ساری کٹ اتر جاتی ہے تو تم بچے ڈائریکٹ باپ سے سیکھو گے. تو ڈائریکٹ باپ سے کب سیکھیں گے؟ ضرور کوئی پروسیجر ہوا نا. پہلا پروسیجر ہے بندو کو یاد کرنا, یہ بیسک نالج. بیسک نالج جنہوں نے پاس کی ان کا پھر کلاس ٹرانسفر ہوتا ہے. کلاس ٹرانسفر ہوگا تو استھان بھی ٹرانسفر ہوگا, پڑھائی کا ٹیچر بھی ٹرانسفر ہو جائے, دوسرا ملے گا. تو تاتپری ہے کہ شیو پرماتما پارٹی کے روپ میں جب پرماتما پارٹ بجانے کے لیے سرشتی پر پرتکش ہوتا ہے تو کوئی پتت بدھی والے میں پرویش نہیں ہوتا ہے, وہ اس میں پرویش ہو کر کے سنسار میں پرتکش ہوتا ہے جس کی مورتیاں ساری دنیا میں کھدائیوں میں ملی ہیں. نراکاری اسٹیج والے, نسنکلپی اسٹیج والے میں ایسا دڑھتا کا نشچے کا پکا پارٹ ہو کہ مایا کتنا بھی ہلائے لیکن اس کی من بدھی ہلے ہلے نہیں. کوئی کی من بدھی مٹی کے ڈھیلے کی طرح تھوڑی سی مایا کی ٹھوکر لگی اور انشچے پیدا ہونے لگا. کیا بھگوان باپ آیا ہوا ہے؟ بھگوان آیا ہوا ہے پھر بھی ایسے ہوتا ہے. تو بھاتی بھاتی کے انشچے, بھاتی بھاتی کے پوچھ پوچھ کی پوچھ دے ابھیمانی کی لگتی رہتی, لیکن نہیں, ایک بار اگر نشچے بیٹھ جائے, ایک بار انجام کر لیا تو پھر ہلنے کی درکار نہیں ہونی چاہیے. پرماتما باپ کے بچے مانے امرناتھ کے بچے, امرناتھ کے بچے مانا مرنے والے ہوں گے نہیں, امر. ان کو کوئی بھی مایا کی طاقت, راون کی طاقت ان کو انگد کی طرح, جیسے انگد کا پاؤں اچل ہو گیا ایسے ان کی من بدھی روپی پاؤں اٹل بنا رہے. تو باپ سمجھاتے ہیں کہ میں پتت دنیا میں نہیں آتا ہوں. اس واقعے سے کیا ظاہر ہوا کہ دیوتاؤں کے پاؤں جب پتت میں نہیں آتے, پتت دنیا میں نہیں آتے, پاؤں نہیں پڑ سکتے اس پتت دنیا میں, تو دیوتاؤں کا بھی جو دیوتا بنانے والا باپ ہے اس کے پاؤں کیا پتت دنیا میں آئیں گے؟ وہ پتت میں پرویش کرے گا کیا؟ یہ کیا سارا گیان الٹا ہو گیا؟ अभी तक कहते थे तमो प्रधान में आता है प्यो बाबा, और अभी क्या कहने लगे हैं कि देवता है, जब पतित में नहीं आते, पतित दुनिया में नहीं आते, तो परमात्मा भी पतित दुनिया में नहीं आ सकता। नहीं आ सकता का मतलब ये नहीं कि वो प्रवेश नहीं करता, प्रवेश तो करता है लेकिन प्रत्यक्ष नहीं होता है। प्रत्यक्ष कहाँ होगा है? क्या आदि मतलब सारी दुनिया के बीच में परमात्मा गॉड फादर को प्रत्यक्ष होना है ना। जैसे मुरली बोला गॉड फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता। सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबसे आकर के मिलते हैं। तो ऐसी प्रत्यक्षता तब होती है जब वो ऐसा आधार मिल जाता है। कैसा आधार? जो अपनी स्टेज में अटल हो, निश्चय बुद्धि विजयंती की स्टेज वाला हो। तो तमो प्रधान सृष्टि पर बाप कैसे आवेगे? माने तमो प्रधान में बाप नहीं आवेगा। बाप तो है निराकार, उनको तो अपना पांव नहीं है, इसलिए इनमें प्रवेश करते हैं। इनमें, इसमें नहीं कहा, इनमें कहा। इसका मतलब दो आत्माओं की तरफ इशारा है, राम और कृष्ण की जो युति बनती है उसमें प्रवेश करते हैं। फिर भक्ति मार्ग में उसका गायन कर दिया है, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम रामचंद्रम भजे। कहा त्रेता का रामचंद्र और कहा सतयुग का कृष्ण, सबको इकट्ठा कर दिया, यादगार कहाँ की? जरूर संगम युग पर ही कोई ऐसा स्वरूप है जिसके लिए भक्ति मार्ग में कह देते हैं तू ही राम है, तू ही कृष्ण है, तू ही शिव है, तू ही शंकर है। ये सब यादगार क्यों बने? क्योंकि प्रैक्टिकल में ऐसा हुआ है। अब तुम बच्चे ईश्वरी दुनिया में बैठे हो, क्या कहा? तुम तमो प्रधान दुनिया में नहीं बैठे हो। तमो प्रधान दुनिया में तो होते हैं शूद्र, और तमो प्रधान दुनिया में होते हैं वो ब्राह्मण है जो आज नीचे हैं कल ऊपर हैं, अप एंड डाउन का पार्ट बजाते रहते हैं। अभी अभी निश्चय, अभी अभी अनिश्चय हो जाता है। तो तुम कहाँ बैठे हो? तुम ईश्वरीय दुनिया में बैठे। ईश्वरीय दुनिया होगी, दुनिया कौन सी बताई? आसुरी दुनिया में असुर होगा और ईश्वरीय दुनिया में जरूर ईश्वर होगा। तो ईश्वरीय दुनिया में जहाँ ईश्वर होगा वहाँ तुम बैठे हुए हो, तो वो अटल होगी या हिलने डुलने वाली होगी? अटल। वो सब है आसुरी दुनिया में बैठी, दुनिया में वो सब बैठे हैं आसुरी दुनिया में, और तुम बैठे हो ईश्वरीय दुनिया में। ये बहुत छोटा संगम युग है। क्या इसका नाम क्या दिया? पुरुषोत्तम संगम युग। एक होता है सामान्य सिर्फ संगम युग, और ये है पुरुषोत्तम संगम युग। बहुत छोटा, बहुत छोटा का मतलब जिससे छोटा और कोई हो नहीं सकता। कितना छोटा? अरे कितना? आखिर 15-20 साल का नहीं। बहुत छोटा का मतलब है सिर्फ एक सेकेंड। ब्रह्मा को विष्णु बनने में कितना टाइम लगता है? एक सेकेंड। बस वो एक सेकंड में ही परमात्मा बाप साक्षिक बुद्धि के स्वरूप के द्वारा प्रत्यक्ष होता है सारे संसार के बीच। तो बताया बहुत छोटा संगम युग है, उसका नाम है असली पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुष माने आत्मा, और आत्माओं के बीच में जो उत्तम से उत्तम है वो इस युग में संसार के बीच प्रत्यक्ष हो जाता है। सारी दुनिया जान लेती है कि ये है ऊंचते ऊंच पार्टधारी, हीरो पार्टधारी। तुम समझते हो हमने दैवी संसार में है और ना आसुरी संसार में है। हम कहाँ हैं? हम ईश्वरीय संसार में, हम ईश्वरीय संसार में हैं। बाप आए हैं हमको घर ले जाने के लिए। ईश्वरीय संसार में होंगे तो जरूर ईश्वर भी होगा, और ईश्वर सिर्फ ऊपर बैठा हुआ नहीं होगा कि सूक्ष्म वतन में या मूल वतन में ऊपर बैठा हुआ हो। नहीं, ईश्वरीय संसार में है तो जरूर ईश्वर भी यहाँ होगा। तुम समझते हो हम बाप हमको आए हैं घर ले जाने के लिए, आए हैं ایسے نہیں آ کر کے پڑھائی پڑھا کر چلے گئی. نہیں, باپ کہتے ہیں وہ میرا گھر ہے, تمہارے خاطر میں اپنا گھر چھوڑ کر کے آتا ہوں. باہر تو سکھ دھام بن جاتا ہے, تو پھر میں تھوڑے ہی آتا ہوں. میں وشو کا مالک نہیں بنتا ہوں. کون بنتا ہے؟ تم بچے وشو کے مالک بنتے ہو, میں وشو کا مالک نہیں بنتا ہوں. تمہارے یوگ بل کی پاور سے جتنی جتنی جس کی یوگ بل کی پاور اتنا ہی وہ وشو کا مالک بنتا ہے. ہم برہمانڈ کا مالک ہوں. کہاں کا مالک ہوں؟ برہما انڈ, برہما کے جو انڈے بچے جہاں رہتے ہیں. انڈا, انڈا مانا بیج روپ اسٹیج. جہاں آتمائیں بیج روپ اسٹیج میں رہتی ہیں, نسنکلپی اسٹیج. واچا, واچا وہاں ہوتی نہیں, وانی سے پرے نروان دھام. میں اس برہمانڈ کا مالک ہوں. یہ پریکٹیکل دھام یہاں اس سرشتی پر بھی بنتا ہے, اس لیے مرلی میں بولا ہے کہ تم بچے پرم دھام کو بھی اس سرشتی پر اتار لیں گے. کیسے؟ جہاں بیج روپ اسٹیج والے بچوں کا سنگٹھن ہوگا, وہ ایسا استھان کہا جائے گا جس کی یادگار دلواڑا مندر بنی ہوئی. یادگار مندر بنا ہے تو ضرور پریکٹیکل میں چیتنیہ میں ایسی اسٹیج بھی بنی ہوگی. سب نراکاری اسٹیج میں ننگے بیٹھے ہوئے. دلواڑا مندر میں دیکھا, ننگے کا مطلب آتمک اسٹیج میں شریر کا جیسے بھان ہی نہیں. تو وشو کے مالک تم بنتے ہو. ماؤنٹ آبو میں جب ایسا سنگٹھن ہوگا, وہاں جو آتمائیں ہوں گی وہ وشو کا مالک پنا وہاں نہیں ہوگا. وہاں تو ان برہمانڈ میں انڈوں کا مالک کون ہوگا؟ ان کو چلانے والا, ان کو بھیجنے والا کون ہوگا؟ برہمانڈ میں تو ایک پرم برہم ہی ہوگا ان کو کنٹرول کرنے والا. لیکن ایک ایسا استھان بھی ہوگا جہاں سکھ دھام ہوگا. تین پانڈو بھون بنیں گے, ایک سورگ دلی میں اور ایک ماؤنٹ آبو میں, جہاں صرف بیج روپ اسٹیج ہوگی. جمنا کے کنٹھے پر سکھ سوروپ اسٹیج ہوگی, اور ایک ہوگا وہ جہاں سے وشو کا کنٹرول ہوگا. اس کی بھی یادگار وہیں بنی ہوئی ہے. سوامی نارائن کا مندر احمد آباد میں بنا ہوا ہے. 108 کوٹھریاں دکھائی گئی ہیں. سوامی ہے کس کا؟ ساری سرشتی کا. اپنے اپنے سہیوگیوں کے دوارا, الگ الگ دھرم کے سہیوگیوں کے دوارا ساری سرشتی کو کنٹرول کرے گا. تو دکھ دھام, شانتی دھام اور سکھ دھام, اس کا پریکٹیکل نظارہ کہاں ہوگا؟ سنگم پر. برہمانڈ میں سب آتے ہیں. ہم برہمانڈ کے مالک ہیں اور برہمانڈ میں سب آتے ہیں آگے پیچھے. کوئی پہلے پہنچے گا, کوئی بعد میں اس استھتی میں, اس اسٹیج میں پہنچے گا. ابھی بھی وہاں مالک بن کر کے بیٹھے ہیں. جن کو باقی آنا ہے, ابھی آئے نہیں ہیں لیکن ان کو بھی اس سرشتی پر آنا ہے. پرنتو